नमस्कार, ऊर्जा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पिछले कई एपिसोड से हम उन उत्तम मंगल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो हम गृहस्थी के लिए बहुत उपयोगी हैं। आइए आज ऐसे ही कुछ और गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। गुरुजी, पिछली बार आपने हमें आर्य सत्य के दर्शन और निर्वाण के साक्षात्कार के बारे में बताया था। आज आप हमें कौन से मंगल के बारे में बताएंगे?
बेटी, अब तक 34 मंगल धर्मों की चर्चा हो गई, अब अगला 35वां। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लोक धर्म से संपर्क होता है तो मन विचलित नहीं हो, ये मंगल धर्म है। लोक धर्म क्या होता है? संसार का धर्म, संसार का एक नियम है, उसमें द्वंद्व चलते ही रहते हैं। बसंत आता है, पतझड़ आता है, वर्षा आती है, सूखापन आता है, उतार आता है, चढ़ाव आता है, ज्वार आता है, भाटा आता है, प्रकाश आता है, अंधकार आता है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है। ये द्वंद्व प्रकृति का नियम है। जैसे प्रकृति के नियम में ये द्वंद्व रहते ही हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे द्वंद्व भरे पड़े हैं, आते ही रहते हैं। लेकिन इससे अगर हमारा मन विचलित होता जाए तो व्याकुल होंगे। ये उतार चढ़ाव आए और हमारा मन विचलित हो गया तो बड़े दुखी हो गए। तो विचलित न हो, मन जितना जितना समता में स्थित है समझो उतना उतना दुख से परे है, बच गया दुख से, सुखी है। जीवन में आते रहें प्रबल तेज तूफान, चित्त अडिग अविचल रहे तो होवे कल्याण। अडिग होना चाहिए, जैसे बहुत बड़ा तूफान है और जो चट्टान है, पहाड़ की चट्टान अब हिलती नहीं, अडिग रहती है, अटल रहती है, अचल रहती है, निष्कंप रहती है। इसी तरह से हमारा मन ऐसा अडिग हो जाए, चाहे जैसे तूफान तो आएंगे ही जीवन में, उससे घबराए नहीं, लेकिन उस अवस्था पर पहुंचते पहुंचते समय लगता है। एक विद्या भगवान ने दी, विपश्यना विद्या, उसका अभ्यास करते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहां पर हिलेगा नहीं बिल्कुल, लेकिन कदम कदम आगे बढ़ता है तो पकते जाता है। तो जीवन में चाहे जितने उतार चढ़ाव आए व्याकुल नहीं हो, इसी का अभ्यास करता है। हानि लाभ निंदा सुयश सुख दुख मान अपमान, चित्त समता में स्थिर रहे तो मंगल कल्याण। ऐसा हो उपदेशों से नहीं होता, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करते हैं तो सफल होता ही है, ये मंगल है।
जी गुरुजी। गुरुजी, इसके आगे कौन सा मंगल आता है?
बेटी, इसके आगे जो 36वां मंगल है वो इस 35वें मंगल का परिणाम है। चित्त समता में स्थित है, जितना जितना समता में स्थित है उतना उतना दुखों से मुक्त है। जैसे ही उतार चढ़ाव आया और विचलित हो गया, विचलित हो गया इसका मतलब ही दुखी हो गया, और नहीं विचलित हुआ तो दुखी नहीं है। तो इसको अशोकं, शोक नहीं है। ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएगा जहां पर शोक का नामो निशान नहीं होगा, दुख का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि मन चट्टान की तरह अडिग हो जाएगा, लेकिन कदम कदम बढ़ते हुए उसे सीखता है। जब भी थोड़ा विचलित होने लगे तो अपने आप को समझाता है, अरे सुख दुख आते ही रहें, ज्यों आवे दिन रैन, तू क्यों खोवे बावला अपने मन की चैन। यूं समझाता है, अरे चैन से रह, काहे चैन खोता है, ये तो आते जाते रहते हैं, अपने समता मत खो। सुख आए नाचे नहीं और दुख आए नहीं रोए, दोनों में समरस रहे शोक मुक्त है सो। अशोक हो गया, शोक निकल गया, जितना जितना समता में स्थापित हुआ उतना उतना शोक दूर होता चला गया, समता में पूरी तरह स्थापित हो गया, शोक का नामो निशान नहीं, दुख का नामो निशान नहीं।
जी गुरुजी, गुरुजी इन उत्तम मंगल के बारे में जानकारी आपसे जरूर लेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी अभी अभी आपने अशोक होने की बात की, इसके आगे कौन सा मंगल आता है?
इसके आगे 37वां मंगल, वो भी उस समता वाले मंगल का परिणाम। जितनी जितनी समता होगी उतना उतना शोक दूर होगा, दुख दूर होगा। जितनी जितनी समता होगी उतना उतना चित्त विरज रहेगा, विमल रहेगा। तो ये जो 37वां है विरजंग माने विमलंग, रज नहीं लगता, मैल नहीं लगता उस पर। अक्सर होता क्या है कि समता न हो तो जरा सी अनचाही बात हुई कि बड़ा द्वेष जगाता है, चित्त द्वेष दूषित हो जाता है तो मैल आ गया। मनचाही हुई तो बड़ी आसक्ति जगाता है, उसके प्रति राग जगाता है, फिर मैल आ गया। तो ये जो राग जगाता है द्वेष जगाता है, राग जगाता है द्वेष जगाता है, ये पुराना स्वभाव था। इसी स्वभाव को तोड़ने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं कि हर अवस्था में समता बनी रहे, हर अवस्था में समता बनी रहे, हम मन में मैल जगने न दे। तो जितना जितना पकते चले जाएंगे धर्म में उतना उतना देखेंगे हम विरजंग विमलंग होते जा रहे हैं। जीवन में आते रहें पतझड़ और बसंत, आते हैं जीवन में, पतझड़ भी होता है बसंत भी होता है। मन में जगे न मैल तो मंगल जगे अनंत, मैल जागेगा तो मंगल नहीं और मैल नहीं जागा तो मंगल जागेगा, खूब कल्याण होगा। तो ये जो विरज विमल ये 37वां मंगल धर्म, इसके आगे का 38वां मंगल धर्म, ये सारे उसके परिणाम हैं। चित्त जितने जितने समता में होता चला जाएगा ये परिणाम आने शुरू होंगे। अशोक है, विरज विमल है और क्षेम पूर्ण है। क्षेम पूर्ण माने सुरक्षित है, निर्भय है। जब चित्त विचलित होता है तो भयभीत होता है, अरे क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, जिसको मेरा कहता हूं उसको क्या हो जाएगा, तो जो क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, भय है। चित्त समता में है, क्या हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति आई है, यह हमेशा रहने वाली नहीं है। जो कुछ प्रकट होता है नष्ट होने के लिए होता है, देर सवेर समाप्त हो गए, हम नहीं व्याकुल होते, हम निर्भय रहते हैं। जैसे जैसे पकता चला जाएगा धर्म में तो ये होगा कि चित्त जैसे निर्मल होता जाएगा उसमें बड़ी मैत्री जागेगी, बड़ी करुणा जागेगी। मैत्री जागेगी तो लोगों से प्यार जागेगा, जिस किसी से बैर था बैर दूर होगा। तो मैत्री है तो निर्भय होते चले जाएंगे, बैर नहीं है, जो निर्भय हो गया वो निर्भय हो गया। बैर है तो भय है, हमारा कोई बैरी है, हम बैर करते हैं तो वो हमसे बैर करता है, तो न जाने कब हमला करेगा, क्या हो जाएगा हमारा। तो जो निर्भय हो गया वो निर्भय हो गया, न तो स्वयं भयभीत होता है न किसी और को भयभीत करता है। ये ऊंची अवस्था है और ये आती है। हमने दुर्जनों से दूर रहने को और सज्जनों के साथ रहने को इस मंगल से काम शुरू किया और देखते हैं कैसे भगवान ने एक पर एक उससे उत्तरोत्तर मंगल कहां पहुंचाया, उस अवस्था पर पहुंचाया जहां जाकर आगे जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव का दुख, वो तो दूर होगा ही, लेकिन आगे जाकर के जन्म मरण का दुख है वो दूर हो जाएगा। समय लगता है, धीरे धीरे काम करना पड़ता है, किसी की कृपा से नहीं होता। कृपा अपने आप पर करो। अपने आप को दुखी बनाया है पागलपन में, इसके बाहर निकलना है। अपने पर कृपा करो, बाहर निकलो, दुखों के बाहर निकलो। ये 38 मंगल धर्म गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। ये वरदान रूपी शिक्षा है, पर चलना होता है, कदम कदम चलते चलते उस अवस्था पर पहुंचना होता है, और पहुंचते ही हैं।
शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें 38 मंगल गुणों के बारे में अभी जानकारी दी। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, अब तक आपने हमें 38 उत्तम मंगल गुणों के बारे में बताया। ये सब जितना सुनने में सरल लगता है, क्या उनका पालन करना भी उतना ही सरल है?
नहीं बेटी, अगर किसी बात को केवल बुद्धि के स्तर पर हम समझना चाहें और बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करने ना चाहें तो आसान है। ठीक है, समता में रहेंगे तो दुख नहीं आएगा, समता में रहेंगे मैल नहीं चढ़ाएंगे, समता में रहेंगे निर्भय रहेगा। बुद्धि समझ गए, जीवन में कैसे उतरे, व्यवहार में कैसे उतरे, तो केवल बुद्धि विलास से मुक्त हुआ ना कोई। जब अपनी प्रज्ञा जगे सहज मुक्त है सो। ये अपनी प्रज्ञा जगानी, ये सारे मंगलों को आगे बढ़ते 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 उत्तम परम उत्तम मंगल तक पहुंचना हो तो प्रज्ञा जगानी पड़ती है। और प्रज्ञा का मायने ये प्रत्यक्ष ज्ञान, अपना ज्ञान। बुद्धि विलास वाला ज्ञान तो किसी ने कहा और हमने स्वीकार किया बुद्धि से, नहीं, अपना ज्ञान, अपनी अनुभूति से जो ज्ञान जागता है उसको भावनामयी प्रज्ञा भी कहा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहा, परोक्ष ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान। वो जब जागेगा तब अंदर से समता आनी शुरू होगी। भीतर जो हमारा एक बिहेवियर पैटर्न बन गया, हैबिट पैटर्न बन गया कि जब देखो तब प्रतिक्रिया करेंगे, राग के करेंगे, द्वेष के करेंगे, उसको नहीं पलटा और ऊपर ऊपर से हमने केवल अपने को सुधारा तो बात नहीं बनती। तो ये विद्या अंतर्मुखी होकर के भीतर किस तरह की मन पर और शरीर पर कैसी सेंसेशन चल रही है, कैसी संवेदना चल रही है, सुखद है तो राग नहीं जगने देंगे, दुखद है द्वेष नहीं जगने देंगे। क्यों नहीं जगने देंगे? समझेंगे, देख अनित्य है ना, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है। ये प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जब इसे जानने लगेंगे, इसे प्रत्यक्ष जानने के लिए ये प्रज्ञा रूपी ऊर्जा जगानी होगी। ये विद्या उस ऊर्जा को जगाने की विद्या है। भीतर वाली ऊर्जा नहीं जागी केवल बुद्धि से काम करते रहे, वो लाभ नहीं होगा। जैसे मान लो कि किसी के पास आंख से देखने की शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, ऐसे ये एक ऊर्जा है कि हमारे मन में और शरीर में किस तरह की संवेदनाएं चल रही हैं, सुखद है कि दुखद है कि न्यूट्रल है, उसको अनुभव करे और फिर अनुभव करके ये भी जाने कि देख अनित्य है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, ये जाने और ये जान करके चित्त को समता में रखे। ये प्रज्ञा, ये एक ऊर्जा है भीतर की। इसे समझने के लिए एक अपने यहां कहानी चलती है। दो गरीब लड़के, बहुत गरीब, भीख मांग कर अपना पेट पाले। उनमें से एक अंधा, जन्म का अंधा, दूसरे के साथ जाए, हाथ पकड़ के ले जाए, अंधे को देख के लोग भीख ज्यादा दे दे, इस तरह से गुजारा हो। एक दिन जो अंधा था बीमार पड़ गया, बहुत बीमार हो गया, तो दूसरा कहता, भाई अब तू मेरे साथ जाने लायक नहीं है, मैं जाऊंगा तेरे लिए भी भिक्षा ले आऊंगा। वो जाता है और संयोग ऐसा होता है कि कोई एक गृहिणी उसे खीर देती है भिक्षा में। बेचारे के पास पात्र तो है नहीं, तो हथेली में ले करके पी लेता है खीर। अपने मित्र के लिए नहीं रह सकता, दुख है, क्या करे, पात्र ही नहीं है, कैसे लेके जाए। तो मित्र को कहता, भाई आज तो इतनी बढ़िया भीख मिली, खीर मिली खाने को, क्या करूं, तेरे लिए नहीं ला सका, मेरे पास कोई पात्र नहीं था। नहीं ला सका, नहीं ला सका, बता तो सही खीर क्या होती है, उस बेचारे ने कभी खीर खाई नहीं, क्या होती है? अरे तुझे नहीं मालूम खीर क्या होती है? सफेद सफेद होती है, सफेद सफेद क्या होता है? जन्म का अंधा क्या जाने क्या सफेद। अरे तू सफेद नहीं जानता, जो काला नहीं है वो सफेद है, पर काला क्या होता है उसको काला भी नहीं पता। अरे बड़ा मूर्ख है, न तुझे सफेद पता न तुझे काला पता, क्या करें कैसे समझाएं। एक बगुला खड़ा था, सफेद पकड़ लाया उसे, इस बगुले की तरह सफेद। अच्छा आंख तो है नहीं, अंगुलियों से उसको छू के देखता है, आ मुलायम है। अच्छा ये खीर मुलायम होती है, सफेद मुलायम। अरे सफेद सफेद होता है, मुलायम और खुरदरे से क्या लेन देन। तुमने तो कहा इसकी तरह, मैंने हाथ देखे देखा मुलायम, अब तू कहता मुलायम भी नहीं है, तो क्या है भाई। तो समझ, ये जैसा बगुला है ना इस तरह का सफेद। अच्छा फिर कोशिश करता हूं। तो मेरा बेचारा चोंच से शुरू करता है और सारे उसके शरीर पर से अंगुलियां फेरते फेरते पूंछ तक आया, आप समझ गया टेढ़ा है, तेरी खीर टेढ़ी है, सफेद टेढ़ा होता है तेरी खीर टेढ़ी है। जब से मुहावरा चल पड़ा खीर टेढ़ी है, अंधा है ना, उसके पास वो शक्ति नहीं देखने की, तो देखने की शक्ति नहीं तो हजार समझाओ नहीं समझेगा, ऐसे ही अनुभव करने की शक्ति नहीं। मेरे 3.5 हाथ की काया के भीतर जो इस तरह के बड़े स्थूल स्थूल संवेदना होती है, भारीपन है, दुखाव है, गर्मी है, आसान है, अरे इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं, कितने प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, उनको अनुभव करने की शक्ति होनी चाहिए ना, उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा जागती है तो रास्ता खुल गया, मुक्ति का रास्ता खुल गया, 38 मंगल उसमें एकदम पक्ता चला गया और मुक्त अवस्था तक पहुंच गया। ये ऊर्जा जगानी है, ये ऊर्जा महत्वपूर्ण है।
शुक्रिया गुरुजी, ये तो बड़ी मजेदार कहानी सुनाई आपने। इसका मतलब यही हुआ कि हम वही माने जो हम अपने अनुभव से जाने।
बिल्कुल
गुरुजी, अब वक्त हो रहा है हमारे दर्शकों के प्रश्नों का। दर्शकों जाइएगा मत, मिलते हैं तुरंत। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है ऊर्जा। गुरुजी प्रश्न पूछ रहे हैं अनिल कुमार जी दिल्ली से। वो कहते हैं कि मैं एक विपश्यी साधक हूँ। गुरुजी अक्सर लोग विपश्यना को विपासना कहते हैं। मुझसे भी पूछते हैं कि तुम विपासना करने जाते हो तो किसकी उपासना करते हो? आप कृपया इन दोनों विपासना और उपासना का सही अर्थ समझाएं और विपश्यना से इनकी भिन्नता को स्पष्ट करें।
दुर्भाग्य की बात हुई कि अपने देश से यह कल्याणकारी विद्या, मुक्तिदायिनी विद्या 2000 वर्षों से लुप्त हो गई। विद्या लुप्त हुई सो तो हुई, यह शब्द ही लुप्त हो गया। अब पिछले 35 वर्षों से पड़ोसी देश ने संभाल के रखा, तो 35 वर्षों से फिर भारत में आया है, तो यह शब्द बड़ा नया सा, तो अभी तक लोग इसका ठीक उच्चारण नहीं कर पाते। विपासना कहना बिल्कुल गलत है, संस्कृत में समझे तो विपश्यना, पश्यना कहते हैं देखने को, विपश्यना विशेष रूप से देखना माने विशेष रूप से अनुभव करना, भोक्ता भाव से नहीं साक्षी भाव से तटस्थ भाव से अनुभव करना विपश्यना। पाली में इसे वो कहेंगे विपश्यना। उपासना बिल्कुल अलग, उपासना माने किसी के समीप बैठना, उपासन समीप बैठना, अपने उपास्य के समीप बैठना, अपने आचार्य के समीप बैठना कुछ सीखने के लिए। विपासना कहे तो विपरीत बैठना, अरे बिल्कुल उल्टा हो गया, उपासना से बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये विपासना तो न तो विपश्यना से कोई संबंध है इसका, उसके भी विपरीत चला गया, और न उपासना से, तो इस शब्द से बचना चाहिए, ठीक शब्द नहीं है।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं इजराइल से इलाइजा और जेरुशी जी। हम पहले भारत में जबलपुर और मुंबई में रहते थे, वहां सुख शांति नहीं थी, इसलिए हम इजराइल में सेटल हुए, पर वहां भी आए दिन स्थान स्थान पर बम स्फोट होते रहते हैं। अब आप ही बताइए कि हम पति पत्नी सुख शांति के लिए कहां का रुख करें?
भीतर का रुख करो, बाहर कहां सुख शांति मिलेगी? यहां से भाग के वहां जाओगे वहां अशांति है, वहां जाओगे वहां अशांति है, किसी न किसी प्रकार की अशांति, किसी न किसी प्रकार की बेचैनी, सब जगह व्याप्त है। सही शांति तो अपने भीतर है, वो प्राप्त करने सीखो। और भारत से इजराइल जाकर बसे हो तो इजराइल में भी विपश्यना के शिविर लगते हैं, वहां उन शिविरों में शामिल हो जाओ और सीखो इस विद्या को और भीतर की शांति प्राप्त करो। फिर चाहे जहां रहो, भीतर की शांति आ गई तो सब जगह शांति ही शांति है।
जी गुरुजी। गुरुजी, इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
खूब सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है, ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखेगा जरूर ऊर्जा। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का ऊर्जा में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी गुरुजी के साथ आखिरी मुलाकात है। पिछले 45 एपिसोड से लगातार हमने उनसे धर्म के अनेक पहलुओं के बारे में जाना। आज हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमें विपश्यना केंद्रों पर धर्म कैसे सिखाया जाता है ये बताएं। आइए मिलते हैं हमारे गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयनका जी से। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माताजी। गुरुजी, पिछले 45 एपिसोड से आपने हमें धर्म के अनेक पहलुओं के बारे में जानकारी दी। गुरुजी, आज ऊर्जा में हमारी आपसे आखिरी मुलाकात है। मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि विपश्यना केंद्रों पर धर्म एग्जैक्टली कैसे सिखाया जाता है।
बेटी, विपश्यना की जितनी तपोभूमियां हैं, भारत में हो कि सारे विश्व में, स्थान स्थान पर जहां भी हैं, सब जगह एक जैसी शिक्षा है, धर्म सिखाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म सिखाया जाता है, कि बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, ईसाई धर्म, धर्म सिखाया जाता है। हिंदू धर्म कहेंगे तो केवल हिंदुओं का होकर रह जाएगा, जैन धर्म जैनियों का, बौद्ध धर्म बौद्धों का, मुस्लिम धर्म मुसलमानों का, धर्म सबका होता है। तो जो सबका है वो सिखाया जाता है। और एक माने में यह भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म भी सिखाया जाता है, बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी, ईसाई धर्म भी, मुस्लिम धर्म भी। क्यों? क्योंकि आखिर सभी यह चाहते हैं कि लोग अच्छा जीवन जिएं। तो यहां पर अच्छा जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। शिविर में सम्मिलित होने के लिए जो आता है, पहले वो व्रत लेता है कि मैं शील सदाचार का पालन करूंगा, यानी हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कड़वी बात, निंदा की बात, ऐसी बातें नहीं कहूंगा, निकम्मी बातें नहीं करूंगा, नशा पता नहीं करूंगा। ये सदाचार का जीवन। सदाचार के जीवन जीने में कोई बौद्धों की मोनोपोली है कि मुसलमानों की, कि हिंदुओं की, कि जैनियों की, कि ईसाइयों के? सबके काम की बात है और सब चाहते हैं। सबको शील सदाचार का जीवन जीना चाहिए। तो शील सदाचार का जीवन जीना ही सिखाया जाता है, लेकिन कोरा उपदेश नहीं है। उपदेश देने की बहुत आवश्यकता नहीं है, समझते हैं, पर कैसे करें, कैसे करें यह सिखाया जाता है। तो पहला कदम, मन को वश में करना सीखें। अरे जब मन ही वश में नहीं है तो हजार चाहता है कि अच्छा जीवन जीऊं, अच्छा जीवन जीऊं, नहीं जी पाता बेचारा, मन वश में नहीं है ना। तो पहली तपस्या मन को वश में करें। कैसे करें? कोई ना कोई आलंबन चाहिए मन को एकाग्र करने के लिए, कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो जो सहारा दिया जाता है वो भी सार्वजनिक, जिसको सब ग्रहण कर सकते हैं, किसी को कठिनाई नहीं। तो क्या सहारा दिया गया? ये अपना सांस, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस केवल सांस, इसके साथ और कुछ जोड़ना नहीं। सहज स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रहा है जैसे भी जा रहा है। अब ये सांस का आलंबन, इसको कैसे कहेंगे, हिंदू सांस है कि मुस्लिम सांस है कि बौद्ध सांस है? सांस सांस है, मनुष्य मात्र का सांस एक जैसा होता है। तो सांस को जानते रहो, लंबा है तो लंबा है, ऊंचा है तो ऊंचा है, कोई छेड़छाड़ मत करो उसमें, जैसा है वैसा है। इससे दो लाभ हुए, एक तो चित्त एकाग्र करने के लिए आलंबन मिल गया, और दूसरा तटस्थ भाव से रहना सीखने का पहला कदम उठा लिया। हम करेंगे कुछ नहीं, जो हो रहा है हो रहा है, हम तो केवल साक्षी भाव से जानेंगे, दोनों काम साथ चलने लगे। यूं होते 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 मन वश में आने लगा, पहला काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न होने का एक रास्ता मिल गया। मन कितना ही वश में हो जाए उससे पूरी बात बनती नहीं। कोई बुरा काम करने वाला भी अपने मन को वश में करता है। मन को वश में करके बुरे से बुरा काम भी किया जा सकता है, अच्छे से अच्छा काम भी किया जा सकता है। तो केवल मन को वश में कर लेने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूसरी आवश्यक बात है, मन निर्मल होना चाहिए। अगर मन मैला है, उसमें विकार है, क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, तो कोई ना कोई गलत काम हो ही जाएगा। हजार चाहें तो भी विकार है ना, वो सिर्फ चढ़ जाएगा। तो अब दूसरा कदम, मन को कैसे निर्मल करें? तो मन में क्या हो रहा है उसे देखना है। और एक बड़ी बात कि मन में जो हो रहा है, कोई विकार जाग जाए मन में, जागते ही ये अपने शरीर की केमिस्ट्री बदल गई, एकदम जीव रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगी, तरह तरह की संवेदनाएं होने लगी, सेंसेशंस होने लगी। उदाहरण के तौर पर गर्मी जागी, क्रोध जागा तो साथ साथ गर्मी जागी, क्रोध जागा गर्मी जागी, धड़कन बढ़ गई, तनाव आ गया, ये सब साथ है, केमिस्ट्री बदल गई क्रोध आते ही। तो आप कहेंगे मन में तो क्रोध आया, शरीर में क्या आया? अब उसको देख, जो आया उसको देख, साक्षी भाव का अभ्यास कर रहा है सांस से, यहां भी साक्षी भाव से देख। गर्मी आई है तो आई है, देखें कितनी देर रहती है। गर्मी आई तो चलो पंखा खोलो, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत गर्मी है तो चलो नहा लो, ऐसा नहीं करेंगे। हम तो तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से जो हो रहा है उसे देखना सीख रहे हैं। और ये सारा काम कोई भी कर सकता है। क्रोध आया या भय आया या ईर्ष्या आई, क्या लेबल लगाएंगे? कि आपके हिंदू क्रोध आया, आपके मुस्लिम आ गया, आपके जैन, अरे क्रोध क्रोध है। और उससे जो धड़कन बढ़ी तो हिंदू धड़कन बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो हिंदू गर्मी बढ़ी, सार्वजनिक बात है। जैसे हर मनुष्य का सांस सांस है, वैसे हर मनुष्य के विकार विकार हैं, और उससे होने वाली जो संवेदनाएं हैं वो सब की एक जैसी है। पुरुष हो नारी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य मनुष्य है। मन को एकाग्र करने के लिए हमने सांस का सहारा लिया, उसको तटस्थ स्वभाव से देखा। अब विकारों को दूर करने के लिए, चित्त को निर्मल करने के लिए हमने संवेदनाओं का सहारा लिया।
गुरुजी, आपसे इसी विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, आपने अभी अभी कहा कि मन को वश में कर लेने से केवल बात नहीं बनती, मन के विकारों को निकालना बहुत जरूरी होता है, तो इन्हें कैसे निकालें?
बेटी, शरीर पर संवेदना होती है तो एक स्वभाव बन गया, एक हैबिट पैटर्न बन गई। सुखद संवेदना जागी कि झट प्रतिक्रिया करता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, राग जगाता है, आसक्ति जगाता है। दुखद संवेदना जागी कि झट प्रतिक्रिया करता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, द्वेष जगाता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है। कहां समता? समता नहीं है, व्याकुल होता है। सारी ट्रेनिंग इस बात की है कि एक तो ये कि मन को इस लायक बनाओ, इतना सेंसिटिव करो उसे और ये सांस को देखते देखते हो जाता सेंसिटिव। इतना सेंसिटिव करो कि शरीर पर जो कुछ हो रहा है उसको हम अनुभव कर सकें, और फिर उसमें ये क्षमता जागे कि वो समझे कि जो हो रहा है वो अनंत काल तक एक जैसा रहने वाला नहीं है। उत्पन्न हुआ, देर सवेर समाप्त हुआ, उत्पन्न हुआ, देर सवेर समाप्त हुआ, अनित्य है, भंगुर है, परिवर्तनशील है, उसका स्वभाव है। अरे जो बदलता रहता है उसके प्रति क्या राग करें, देखते देखते बदल जाता है। यूं अपने स्वभाव को बदल रहे हैं, अपने हैबिट पैटर्न को बदल रहे हैं जो सबकी एक जैसी है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन की लेन देन नहीं, पुरुष नारी कोई लेन देन नहीं, स्वभाव है। हर मनुष्य का ऐसा ही स्वभाव है, विकार जगाता है, व्याकुल होता है। अब उस व्याकुलता के बाहर निकलने के लिए चित्त को निर्मल करने का काम करता है, चित्त को समता में स्थापित करने का काम करता है। क्रोधी आदमी देखेगा काम करते करते, अभ्यास करते करते क्रोध कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, छुटकारा होने लगा। ऐसे ही सारे विकार कम होते होते जितना जितना काम करेंगे, जिस तरह से काम करेंगे, बात समझ गए, काम करना है, काम जितना अच्छी तरह कर रहे हैं, निरंतरता से कर रहे हैं, विकार कम होते ही चले जाएंगे। तब एक बात और समझ में आएगी कि अपने यहां ऋषियों ने, मुनियों ने, सदगुरुओं ने ये जो कहा कि शील सदाचार का जीवन जियो, तो ये समझा कर कहा कि भाई तुम समाज में रहते हो, लोगों का सुख शांति भंग करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो लोगों के सुख शांति भंग न करने के लिए शील सदाचार का पालन करो। आप समझ में आएगा, अरे केवल लोगों की सुख शांति नहीं, मुझको अपने भी सुख शांति रखनी है। खूब समझ में आएगा कि जब जब किसी शील का भंग करता हूं, मन में विकार जगाए बिना कर नहीं सकता, और अब अनुभव कर रहा है जैसे ही विकार जागा तो शरीर की केमिस्ट्री ऐसी हो गई कि व्याकुल हो गया, विकार जागा कि व्याकुल हो गया। आप विकार जागे नहीं, सदाचार का जीवन इसलिए जी रहे हैं कि विकार जागे नहीं, तो मैं सुख शांति का जीवन जीता हूं। तो अब केवल औरों पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने आप पर भी एहसान करने के लिए काम कर रहा हूं। खूब समझ में आएगा, और यह सार्वजनिक बात है, सार्वदेशिक बात है, सार्वकालिक बात है, सबकी बात है। यही कारण है कि विपश्यना की तपोभूमि या भारत में या विश्व में जहां कहीं भी है, सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, सबको एक जैसा लाभ होता है। तो धर्म सिखाते हैं, धर्म सबका होता है, और इसलिए सब स्वीकार करते हैं, सबका कल्याण होता है।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, इसी विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, आपने हमें बताया कि हर संप्रदाय के लोग विपश्यना सीखने आते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का यही इम्प्रेशन है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म सिखाया जाता है।
अरे नहीं बेटी, बहुत गलत इम्प्रेशन है। अगर किसी को है तो बौद्ध धर्म सिखाया जाता तो बाकी संप्रदाय वाले क्यों आते। धर्म सिखाया जाता है किसी को बौद्ध बनाने के लिए नहीं, अच्छा आदमी बनाने के लिए। अच्छा आदमी तो सब बनना चाहते हैं, अच्छा आदमी नहीं है तो अच्छा हिंदू कैसे होगा, अच्छा मुसलमान कैसे होगा, अच्छा क्रिश्चियन कैसे होगा। अच्छा आदमी बने तो धर्म सीख रहे हैं। भगवान बुद्ध ने धर्म सिखाया, बौद्ध धर्म नहीं। तो इसलिए सारी तपोभूमियों में किसी को बुद्ध बनाने का काम नहीं, धार्मिक बनाने का काम, धर्म का जीवन जियो, और उसके परिणाम आते हैं। लोग देखते हैं बहुत क्रोधी आदमी कैसे क्रोध के बाहर निकल गया, बहुत भयभीत आदमी कैसे भय के बाहर निकल गया, व्यसनों की छुटकारा, इस व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति कैसे बाहर निकल गया, माने हर प्रकार के दुखों के बाहर निकलने की बात है। अपना स्वभाव जो हमेशा अपने आप को दुखी रखने वाला था, उस स्वभाव से बाहर निकलना की विद्या है, और सबको समान रूप से कल्याण होता है। ये नहीं कि अपने को बौद्ध कहेगा तो उसमें कल्याण होगा, हिंदू है जीवन भर अपने को हिंदू कहता जाए, मुस्लिम अपने को जीवन भर मुस्लिम कहता चला जाए, ईसाई अपने को ईसाई कहता चला जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आदमी आदमी है, अच्छा आदमी बने। बस धर्म हमको अच्छा आदमी बनना सिखाता है, पर इसके लिए काम करना होता है, ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की कसरत सीखनी होती है, मन को स्वस्थ रखने के लिए मन की कसरत है। तो इसके लिए, इस विद्या को सीखने के लिए, बहुत गहरी विद्या है, अंतर मन की गहराइयों तक मन का ऑपरेशन करते 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 जहां जड़ें हैं, मन की जड़ें हैं, विकारों की जड़ें हैं, वहां सुधार करना शुरू होता है तो 10 दिन समय लगता है। और उसके बाद भी ये विद्या सीख करके 10 दिन में इतना सीख गया जब उसमें क्रोध नहीं जागेगा, लोभ नहीं जागेगा, द्वेष नहीं, ऐसा नहीं, उसको एक रास्ता मिल गया और परिवर्तन आना शुरू हो गया अच्छाई के लिए, ये निश्चित बात है। करते 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 आगे बढ़ता चला जाएगा और भला आदमी बन जाएगा और सुखी हो जाएगा, करते करते होगा। जीवन के 10 दिन लगते हैं बेटे। इस परंपरा में एक नियम है, धर्म सिखाने वाला आचार्य कभी किसी से कुछ मांग नहीं करता। मांग करता है तो धर्म नहीं है, कुछ मांग नहीं करता। लेकिन मैं इस नियम को तोड़ता हूं, मांग करता हूं। क्या मांग करता हूं? अरे भाई, अपने अनमोल जीवन के बहुमूल्य 10 दिन मुझे दो। 10 दिन अपने जीवन के दो, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे मंगल के लिए। और न जाने तुम्हारे जरिए कितनों के मंगल के लिए, कितनों के कल्याण के लिए। खूब भला हो, खूब मंगल हो, धर्म के रास्ते जो चले उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, उसकी स्वस्ति हो, उसकी मुक्ति हो।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, हमारे शो का अगला सेक्शन हमारे दर्शकों के प्रश्नों पर आधारित है, तो दर्शकों जाइएगा मत, लौटते हैं तुरंत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी प्रश्न पूछ रहे हैं SM सिंह जी नेपाल से। वो पूछते हैं, इस जीवन के अंतिम क्षण का संस्कार लेकर अगले जन्म की शुरुआत होती है, लेकिन कोई व्यक्ति दुर्घटना से अचानक मर गया हो या उसकी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई हो, तो उस व्यक्ति का इस जन्म का अंतिम संस्कार क्या बनता है और अगले जन्म का प्रथम क्षण कैसे शुरू होता है?
बेटी, मृत्यु मृत्यु है, किसी प्रकार भी हो, मृत्यु के क्षण चित्त की जो अवस्था है बिल्कुल उसी प्रकार की अवस्था अगले जन्म के प्रथम चित्त में होगी। ये प्रकृति का नियम है, तो बीच में कोई अंतराल नहीं होता। यहां पर मृत्यु हुई और तुरंत अगले क्षण नया जन्म शुरू हो गया, तो जिस तरह का चित्त इस समय है मृत्यु के समय, वो किसी कारण से मृत्यु हुई उससे कोई लेन देन नहीं, ठीक वैसा ही अगले जीवन का प्रथम चित्त हो जाएगा।
जी गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं रमेश वर्मा जी उदयपुर राजस्थान से। विपश्यना साधना के लाभ जानते हुए भी हम साधना नहीं करना चाहते, तो क्या हम इस अनिच्छा की बिना इससे द्वेष किए विपश्यना कर सकते हैं ताकि इससे संघर्ष ना करना पड़े?
अरे भाई, मन को दृढ़ करके काम तो शुरू करो, सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। मन को दृढ़ करके आ जाओ 10 दिन के लिए, कोई समस्या नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा।
जी गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रही है मनीषा जी मुंबई से। वो पूछती है कि आपके विपश्यना शिविरों में कोई चार्ज नहीं लिया जाता, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप चार्ज लें तो उन रुपयों से कई अच्छे सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं?
अरे बेटी, कोई अच्छे सामाजिक कार्य करने हैं तो उसके लिए चंदा करो ना इकट्ठा, धर्म को क्यों बिगाड़ते हो? धर्म तो जो आदर्श लिए हुए सदियों से चला आ रहा है, धर्म में जहां चार्जेस लेने शुरू किए वहां दुकानदारी शुरू हो गई। सिखाने वाला भी उसका लक्ष्य ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज करें, अब तो लोग आने लगे ना, और चार्ज कर दें और पैसा आ जाए, हम वहां लगा देंगे, अच्छे काम में लगा देंगे। अरे मन में ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, ये सीखने के लिए अधिक से अधिक लोग आए, न कि अधिक से अधिक पैसा मिले। पैसा मिले की बात आई कि बिगड़ा, अपने को धोखा देने की बात है कि हम ये जो यहां पर कमा रहे हैं ना, उसको देखो अस्पताल में लगाते हैं, स्कूल में लगाते हैं। अस्पताल का काम अच्छी बात है, स्कूल का काम अच्छी बात है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करो, उसको इसके साथ क्यों जोड़ो? इसके साथ जोड़ने का मतलब ये हो गया कि धर्म को व्यवसाय बना दिया, उसके चार्जेस देने शुरू कर दिए, और जहां चार्ज देने शुरू कर दिए दो नुकसान हो गए। एक तो ये कि व्यवसायिक बुद्धि आएगी ही, आए बिना नहीं रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी हानि यह होगी कि तुमने जो चार्ज लिए हैं, शुरू किया है, एक गरीब आदमी उसके पास नहीं है देने को, उसका क्या होगा? तो धर्म केवल धनवानों का हो गया, गरीबों का नहीं है। अब कितने लोग झोपड़पट्टी के आते हैं, क्या दान देंगे बेचारे, क्या चार्ज देंगे? वो 10 दिन अपने जीवन का दे रहे, यही बड़ी बात है उनके लिए। कोई चार्जेज लगाना धर्म को भ्रष्ट करना है। धर्म में भेदभाव नहीं होता, सबके लिए, सब दुखी हैं, धर्म सबके लिए है, सबको मुक्त हस्ते बांटा जाए। तो केवल बांटने के दृष्टिकोण से धन दिया जा रहा है, पाने के दृष्टिकोण से नहीं। अपने आप जो लोग दान दे रहे हैं धर्म के लिए दे रहे हैं, किसी और काम में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए।
शुक्रिया गुरुजी, ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी ढंग से समझाई। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल गुप्त वाराणसी से। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सुख की अनुभूति में क्या समभाव रखना उचित होगा? क्या प्राकृतिक सौंदर्य, सुमधुर संगीत, स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित पुष्प और सुकोमल स्पर्श के समय समभाव रखना उचित है?
इंद्रिय सुखों का विरोध नहीं है, इंद्रिय सुख हो उसे भोगे भी, आसक्ति न हो। जहां इन इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्ति जागी कि जैसे ये सुख दूर होगा, दूर तो होगा समय पाकर के, बहुत दुख जागेगा, तो अपने लिए दुख का निर्माण कर रहे हैं। आसक्ति से बचो, अनासक्त होकर के इंद्रिय सुख भोगने में कोई दोष नहीं।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रही है वीणा जी नई दिल्ली से। वो पूछती है, हर आदमी अकेला आया है और अकेला जाएगा, फिर भी जीने के लिए सहारा चाहिए, दूसरों के साथ की उम्मीद किस हद तक रखें कि दुख ना हो?
बेटी बिल्कुल ठीक है कि हर व्यक्ति अकेला आता है अकेला जाता है, उसके वश की बात नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि औरों के साथ जीता है, आया अकेला गया अकेला, जीता सबके साथ है, वो अपने वश की बात है। जब औरों के साथ जीना है तो कैसे जिए, अच्छा जीवन जिए, धर्म का जीवन जिए, ये तो अपने वश की बात है। आना और जाना अपने वश की बात नहीं, सबके साथ मिलकर जीना ये अपने वश की बात है, अच्छा जीवन जिए।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी कि जिन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम ऊर्जा को देखा है और आपको पिछले 46 एपिसोड से लगातार सुना है, उनमें धर्म की प्रेरणा जरूर जागेगी और वो धर्म के रास्ते पे चल पड़ेंगे। इसी बात पर आपसे विदा लेते हैं। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। दर्शकों, हम सब की यही उम्मीद रहेगी कि हम सब गुरुजी के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चल पड़े और अपना अपना मंगल साधे। नमस्कार।